नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, टिम वू की द मास्टर स्विच, द राइज एंड फॉल ऑफ इन्फॉर्मेशन एम्पायर्स, संचार उद्योगों के इतिहास, एकाधिकार और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर केंद्रित विश्लेषणात्मक गैर कथा पुस्तक है। वो जिन्होंने नेट न्यूट्रैलिटी शब्द को लोकप्रिय बनाया, टेलीफोन, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन और इंटरनेट के अमेरिकी इतिहास के माध्यम से एक केंद्रीय प्रश्न उठाते हैं, सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने वाला वास्तविक स्विच किसके हाथ में है। पुस्तक का तर्क है कि नई संचार तकनीकें प्रायः खुले प्रयोग और अनेक प्रतिस्पर्धियों के साथ शुरू होती है, लेकिन समय के साथ शक्तिशाली कंपनियां उन्हें केंद्रीकृत, नियंत्रित और बंद व्यवस्थाओं में बदल देती हैं। वो इस क्रम को केवल व्यावसायिक बदलाव नहीं मानते, क्योंकि सूचना पर नियंत्रण अभिव्यक्ति, नवाचार और नागरिक जीवन को प्रभावित करता है। ऐतिहासिक उदाहरणों, नियामकीय फैसलों और उद्योग नेताओं की रणनीतियों के सहारे पुस्तक इंटरनेट के भविष्य के लिए चेतावनी देती है। इसका उद्देश्य तकनीक को निष्पक्ष उपकरण मानने के बजाय उसे आर्थिक शक्ति, सरकारी नीति और सार्वजनिक स्वतंत्रता के संघर्ष स्थल के रूप में देखना सिखाना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले द साइकिल। खुले आविष्कार से बंद सूचना साम्राज्य तक पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा द साइकिल है। वो के अनुसार लगभग हर बड़ी सूचना तकनीक एक ऐसे दौर से गुजरती है जिसमें शुरुआत में प्रवेश अपेक्षाकृत खुला होता है, प्रयोग सस्ते होते हैं और नए खिलाड़ी पुराने ढांचे को चुनौती देते हैं। आगे चलकर उद्योग में पूंजी, वितरण नेटवर्क, मानकीकरण और सरकारी संरक्षण का महत्व बढ़ता है। तब कुछ कंपनियां प्रतिस्पर्धियों को खरीद कर, विशेष अनुबंध बनाकर या पहुंच के नियम नियंत्रित करके व्यवस्था को बंद करने लगती हैं। अंततः नया तकनीकी बदलाव या एंटीट्रस्ट हस्तक्षेप उस प्रभुत्व को कमजोर कर सकता है, पर बाद में केंद्रीकरण फिर लौट सकता है। वो टेलीफोन, रेडियो, फिल्म और टेलीविजन को इस पैटर्न के उदाहरणों के रूप में पढ़ते हैं। इस ढांचे की शक्ति यह है कि यह तकनीकी प्रगति को स्वचालित रूप से मुक्तिदायी मानने से रोकता है। कोई तकनीक खुली वास्तुकला के साथ शुरू हो सकती है, फिर भी उसके ऊपर बनने वाली कंपनियां नियंत्रण के नए बिंदु बना सकती हैं। हालांकि इस मॉडल की सीमा भी है, हर उद्योग एक ही गति या बिल्कुल एक ही रूप में नहीं बदलता। फिर भी द साइकिल पाठक को यह पूछने का उपयोगी तरीका देती है कि किसी माध्यम में प्रवेश, वितरण और दर्शक तक पहुंच को वास्तव में कौन नियंत्रित कर रहा है। दूसरा, AT&T और सरकारी नीति। एकाधिकार के निर्माण तथा विघटन की दोहरी भूमिका वो के इतिहास में बेल सिस्टम और AT&T केंद्रीय केस स्टडी है, क्योंकि वे दिखाते हैं कि सूचना का बुनियादी ढांचा केवल बाजार की ताकतों से संचालित नहीं होता। टेलीफोन नेटवर्क में भारी निवेश, सार्वभौमिक सेवा का आकर्षण और परस्पर जुड़ाव की जरूरत ने एकीकृत व्यवस्था के पक्ष में तर्क दिए, लेकिन यही तर्क एक ऐसे विशाल एकाधिकार को वैधता देने का माध्यम भी बने जिसने उपकरणों, नेटवर्क और सेवाओं पर असाधारण नियंत्रण रखा। पुस्तक का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सरकार को केवल बाहरी नियामक मानना पर्याप्त नहीं है। सरकारी निर्णय कभी प्रमुख कंपनियों को संरक्षण देकर केंद्रीकरण बढ़ाते हैं और कभी एंटी ट्रस्ट कार्रवाई तथा नियामकीय सुधारों के जरिए उस शक्ति को तोड़ते हैं। AT&T का बाद का विघटन इस दूसरी भूमिका का प्रमुख उदाहरण है। वो के लिए सबक यह नहीं कि हर नियमन बुरा है या हर निजी कंपनी स्वभावतः हानिकारक है। प्रश्न यह है कि नियम किस प्रकार के ढांचे को प्रोत्साहित करते हैं। क्या वे नए उपकरणों, नए सेवा प्रदाताओं और प्रतिस्पर्धी नेटवर्कों के लिए जगह बनाते हैं या मौजूदा नियंत्रक को अपनी स्थिति स्थायी करने देते हैं। यह विश्लेषण आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म और ब्रॉडबैंड बाजार को समझने में भी उपयोगी है। तीसरा, क्रोनोस इफेक्ट। स्थापित कंपनियां विघटनकारी नवाचार को क्यों दबाती हैं? वो क्रोनोस इफेक्ट नाम से उस प्रवृत्ति को समझाते हैं जिसमें किसी उद्योग में शुरुआती प्रभुत्व प्राप्त कर चुकी कंपनी अपने ही भविष्य के संभावित विकल्पों को खतरे की तरह देखने लगती है। नाम यूनानी कथा के क्रोनोस से लिया गया है, जिसने सत्ता छीनने के भय से अपने बच्चों को निगल लिया था। पुस्तक में इसका अर्थ है कि स्थापित कंपनी नई तकनीक को अपनाने के बजाय उसे धीमा करने, सीमित करने या अपने अनुकूल बनाने का प्रयास कर सकती है। रेडियो उद्योग में RCA और NBC के प्रमुख डेविड सानोफ द्वारा FM रेडियो के प्रति विरोध इसका चर्चित उदाहरण है। FM बेहतर ध्वनि और अलग प्रसारण संभावनाएं देता था, पर वह मौजूदा AM आधारित व्यावसायिक व्यवस्था के लिए चुनौती था। इसी तरह वेस्टर्न यूनियन ने टेलीफोन को टेलीग्राफ के लिए खतरा समझा। इस अवधारणा का महत्व यह है कि यह लोकप्रिय धारणा को चुनौती देती है कि बड़ी कंपनियां हमेशा सबसे अधिक नवाचारी होंगी। उनके पास संसाधन अवश्य होते हैं, मगर उनकी आय, संपत्ति और संगठनात्मक शक्ति अक्सर पुराने मॉडल से बंधी होती है। इसलिए वू के अनुसार नवाचार की रक्षा के लिए केवल आविष्कारक की प्रतिभा पर्याप्त नहीं, प्रतिस्पर्धा, खुली पहुंच और ऐसी नीतियां भी चाहिए जो मौजूदा हितधारकों को उभरते विकल्प दबाने से रोकें। चौथा, इंटरनेट की खुली संरचना और प्लेटफॉर्म नियंत्रण का उभरता जोखिम। द मास्टर स्विच इंटरनेट को पहले के माध्यमों से अलग संभावनाओं वाला, लेकिन इतिहास के चक्र से मुक्त नहीं, नेटवर्क मानती है। इंटरनेट की मूल डिजाइन में एंड टू एंड सिद्धांत और अलग अलग परतों की संरचना ने नेटवर्क के किनारे पर नवाचार संभव किया। किसी नए ईमेल, वेबसाइट या ऑनलाइन सेवा को बनाने के लिए हर बार केंद्रीय नेटवर्क मालिक की अनुमति आवश्यक नहीं थी। इसी खुलेपन ने विविध प्रयोगों और तेज विकास को प्रोत्साहित किया। वो की चिंता यह है कि तकनीकी संरचना अपने आप में स्थायी राजनीतिक या आर्थिक सुरक्षा नहीं देती। ब्रॉडबैंड प्रदाता, उपकरण निर्माता, ऐप स्टोर, खोज सेवाएं और बड़ी मीडिया कंपनियां अलग अलग स्तरों पर पहुंच को नियंत्रित कर सकती हैं। जब सामग्री, वितरण और उपभोक्ता तक पहुंच के साधन एक ही कॉरपोरेट समूह के पास केंद्रित होते हैं, तब वह प्राथमिकता, कीमत, दृश्यता या उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है। पुस्तक इसीलिए इंटरनेट की बहस को केवल सुविधा और गति की बहस नहीं रहने देती, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धा और उपयोगकर्ता की पसंद का प्रश्न बन जाती है। वो किसी एक कंपनी के बारे में तात्कालिक भविष्यवाणी भर नहीं करते, वे पाठक को नियंत्रण के उन बिंदुओं की पहचान करना सिखाते हैं जो सामान्य उपयोगकर्ता को अक्सर दिखाई नहीं देते। अंत में सेपरेशन प्रिंसिपल, संचार शक्ति को बांटने का संस्थागत प्रस्ताव, चक्र की समस्या के उत्तर में वो सेपरेशन प्रिंसिपल प्रस्तुत करते हैं। इसका मूल विचार राजनीतिक व्यवस्था में शक्तियों के विभाजन जैसा है। संचार क्षेत्र में कैरिज अर्थात नेटवर्क या परिवहन ढांचा, कंटेंट अर्थात सूचना और मनोरंजन का निर्माण तथा उपभोक्ता तक पहुंच के उपकरण जैसे खोज या ऐप आधारित प्रवेश द्वार एक ही कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होने चाहिए। वो का तर्क है कि इन भूमिकाओं का ऊर्ध्वाधर एकीकरण कंपनी को केवल अपने उत्पाद बेचने की शक्ति नहीं देता, बल्कि प्रतिद्वंद्वियों की पहुंच सीमित करने की क्षमता भी देता है। उदाहरण के लिए, नेटवर्क मालिक सामग्री प्रदाता के लिए प्रतिकूल शर्तें बना सकता है, या पहुंच का द्वार नियंत्रित करने वाला मंच कुछ सेवाओं को अधिक दृश्यता दे सकता है। यह प्रस्ताव हर व्यावसायिक एकीकरण को अनिवार्य रूप से गलत नहीं ठहराता। इसकी चिंता उस संरचनात्मक शक्ति से है जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और खुली अभिव्यक्ति को कमजोर कर सकती है। सेपरेशन प्रिंसिपल पुस्तक को महज ऐतिहासिक चेतावनी से आगे ले जाता है। यह नीति निर्माताओं के लिए एक कसौटी देता है। किसी विलय, प्लेटफॉर्म नियम या नेटवर्क नीति का मूल्यांकन इस आधार पर करें कि क्या उससे सूचना के मार्गों पर एक ही इकाई का नियंत्रण बढ़ रहा है। निष्कर्ष में, द मास्टर स्विच उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो इंटरनेट मीडिया प्रतिस्पर्धा नीति, एंटीट्रस्ट कानून या डिजिटल प्लेटफॉर्म की शक्ति को सतही तकनीकी बदलावों से आगे समझना चाहते हैं। पत्रकारों, नीति निर्माताओं, कानून और प्रबंधन के विद्यार्थियों, तकनीक क्षेत्र के पेशेवरों तथा सजग इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इससे एक ठोस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मिलता है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक विलय, नेट न्यूट्रलिटी, ऐप स्टोर नियमों या ब्रॉडबैंड नियंत्रण जैसी बहसों को केवल उपभोक्ता सुविधा के आधार पर नहीं, बल्कि बाजार संरचना और सार्वजनिक अभिव्यक्ति के आधार पर भी परख सकता है। इसका बौद्धिक लाभ द साइकिल, क्रोनोस इफेक्ट और सेपरेशन प्रिंसिपल जैसे याद रहने वाले ढांचे हैं जो जटिल इतिहास को प्रश्न पूछने की स्पष्ट विधि में बदलते हैं। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में वो की विशेषता तकनीकी इतिहास, व्यावसायिक रणनीति और सार्वजनिक नीति को एक ही तर्क में जोड़ना है। वे यह नहीं मानते कि नई तकनीक अपने आप लोकतांत्रिक परिणाम देगी। साथ ही पुस्तक का खुला बनाम बंद ढांचा कभी कभी वास्तविक दुनिया की जटिलताओं को सरल बना देता है और डिजिटल कंपनियों के विविध व्यावसायिक रूपों पर बहस की गुंजाइश छोड़ता है। फिर भी यही स्पष्टता इसकी ताकत है। यह दिखाती है कि सूचना के ढांचे में शक्ति कैसे जमा होती है और क्यों खुले नेटवर्कों की रक्षा के लिए सजग नागरिकता तथा सोच समझ कर बनाई गई संस्थागत सीमाएं आवश्यक हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं टिम्बू, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।